आगे सबक देखिए भाई, वलौ काल हाज़ा बनी व सबत अला ज़ालिका अतका व मअनल मसअलति इज़ा कान यूलदु मिस्लुहु लिमिस्लिही व इज़ा कान ला यूलदु मिस्लुहु लिमिस्लिही ज़करहु बाद हाज़ा थुम्म इन लम यकुन लिल अब्दि नसबुन मारूफुन यस्बुतु नसबुहु मिन्हु लिअन्न विलायतद दावति बिल मिल्कि साबितुन والعبد محتاج الى النسب। भाई किताब العتاق हम पढ़ रहे थे। साहिब हिदाया ने आपको गुज़श्ता सबक में बतलाया कि अगर कोई शख्स अपने गुलाम को या हुर्र या अतीकु कहकर निदा देगा तो इससे गुलाम आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यह हुर और अतीक ये अल्फाज आजादी के अंदर सरीह हैं। तो आका ने ऐसा लफ्ज निदा के अंदर इस्तेमाल कर लिया जो आजादी के अंदर सरीह है, तो इससे आजादी साबित हो जाएगी, इसलिए क्योंकि सरीह लफ्ज जो है वो नियत का मोहताज नहीं होता, उसमें और माना का इहतमाल ही नहीं है। तो जब वो लफ्ज अदा होगा तो वो अपने माना को साबित कर देगा। और फिर साहिब हिदायत ने आपको ये भी बतलाया कि जब किसी शख्स को निदा दी जाती है, मसलन अगर उसके नाम के साथ निदा दी गई या जैदु, तो यहां दरअसल उसको इत्तला देना होता है उसके अलम के साथ कि मैं तुम्हें तलब कर रहा हूं, मेरे पास हाजिर हो जाओ या मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन जब किसी को वसफ के साथ निदा दी जाए तो वहां मकसूद ये होता है कि वो मुनादा उस वसफ के साथ हाजिर हो जाए। और यहां पर आका ने या हुर्रु या अतीकु कहकर निदा दी है, यानी वसफ को जिक्र किया है। मालूम हुआ वो चाहता है कि उसका गुलाम इस वसफ के साथ उसके सामने हाजिर हो जाए। और यह हुर्रियत ऐसा वसफ है जो आका की तरफ से साबित भी हो सकता है। तो आका जब भी ऐसे वसफ के साथ अपने गुलाम को निदा देगा कि वो वसफ आका की तरफ से साबित भी हो सकता है, यानी वो वसफ आका के इख्तियार में है, वो जब चाहे अपने गुलाम में हुर्रियत को साबित कर सकता है। तो जब आका ऐसे वसफ के साथ अपने गुलाम को निदा देगा तो इस सूरत में इसको खबर करार दिया जाएगा कि आका उस गुलाम को खबर दे रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर इस वसफ को साबित कर दिया है, अब तुम इस वसफ के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ या तुम इस वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तो लिहाजा आका जब भी ऐसे वसफ के साथ अपने गुलाम को निदा देगा कि वो वसफ आका के इख्तियार में है, तो इस निदा को खबर करार दिया जाएगा कि आका गुलाम को खबर दे रहा है कि मैंने ये वसफ तुम्हारे अंदर साबित कर दिया है, अब तुम इस वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर आका ने गुलाम का नाम ही हुर रखा हुआ है तो अब या हुर कहकर निदा देने से वो गुलाम आजाद नहीं होगा, क्योंकि यह हुर उसने गुलाम का नाम रखा है, तो गोया वो गुलाम को उसके अलम के साथ अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है भाई। लेकिन अगर नाम तो उसने गुलाम का हुर रखा है और वो उसको फारसी में निदा देता है या आजाद, तो इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि गुलाम का नाम तो आजाद नहीं है, तो इसको अलम के साथ निदा करार नहीं दिया जा सकता, तो इसको वसफ ही एतबार किया जाएगा और इसे खबर कहा जाएगा कि आका अपने गुलाम को खबर दे रहा है कि मैंने तुम्हें यह वसफ यानी आजादी को साबित कर दिया है, इस आजादी के साथ अब मेरे सामने हाजिर हो जाओ। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि जिस तरह आका अपने गुलाम को अंत हुर्रुन या अंत अतीकुन वगैरह का लफ्ज कहे तो गुलाम आजाद हो जाता है, इसी तरह अगर आका आजादी की निस्बत गुलाम या बांदी के ऐसे उज्व की तरफ करे जिसके साथ पूरी जात इंसानी को ताबीर किया जाता है, जिसके साथ पूरे बदन इंसानी को ताबीर किया जाता है, तो इस सूरत के अंदर भी गुलाम आजाद हो जाएगा। मसलन अरबी जुबान में रस का लफ्ज पूरे इंसान के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, या इसी तरह वजहुन का लफ्ज पूरे इंसान के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, या इसी तरह रकबा का लफ्ज पूरे इंसान के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर आका ने अपने गुलाम से कहा वजहू का हुर्रुन या रसू का हुर्रुन या रकबतु का हुर्रुन, तो इन तमाम सूरतों में गुलाम आजाद हो जाएगा। या इसी तरह बांदी से कहा फर्जु की हुर्रुन, तेरी शर्मगाह आजाद है, तो फर्ज ऐसा लफ्ज है कि जिसके साथ पूरी बांदी को ताबीर किया जाता है, लिहाजा इन तमाम सूरतों में वो गुलाम या बांदी आजाद हो जाएंगे। और अगर आका ने आजादी की निस्बत ऐसे जुज की तरफ की जो पूरे बदन के अंदर फैला हुआ है, तो इस सूरत में उस जुज के अंदर आजादी साबित हो जाएगी। मसलन आका ने अपने गुलाम से कहा तेरा निसफ आजाद है, या तेरा तीसरा हिस्सा आजाद है, या तेरा पचासवां हिस्सा आजाद है, या तेरा सौवां हिस्सा आजाद है, तो ये निसफ जो है ये तो पूरे बदन में फैला हुआ है, हर हर जुज का निसफ मुराद है, या हर हर जुज का तीसरा हिस्सा मुराद है, या हर हर जुज का सौवां हिस्सा मुराद है, तो इस सूरत में इन अज्जा के अंदर आजादी साबित हो जाएगी। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि इसके अंदर साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। इमाम साहिब के नजदीक इताक में तजज्जी हो सकती है कि गुलाम का कुछ जुज आजाद कर दिया जाए और कुछ ममलूक ही रहे, जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, इताक में तजज्जी नहीं हो सकती, इताक तकसीम को कबूल नहीं करता। जब गुलाम या बांदी के कुछ हिस्से को आजाद किया जाएगा तो पूरा गुलाम या बांदी ही आजाद हो जाएगा। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अगर गुलाम के ऐसे हिस्से की तरफ आजादी की निस्बत की जो पूरे बदन में फैला हुआ है, तो इस सूरत में इमाम साहिब के नजदीक ये इतना हिस्सा आजाद हो जाएगा, जबकि साहिबैन के नजदीक पूरा गुलाम आजाद हो जाएगा। और इस इख्तिलाफ की तफसील कहते हैं आगे हम जिक्र करेंगे। और फिर अगर आका ने आजादी की निस्बत किसी ऐसे जुज की तरफ की, ऐसे उज्व की तरफ की जिसके साथ पूरे बदन को ताबीर नहीं किया जाता, जैसे कि हाथ है या पांव है, तो इस सूरत में हमारे नजदीक गुलाम या बांदी आजाद नहीं होंगे। मसलन आका ने अपने गुलाम से कहा यदू का हुर्रुन, तेरा हाथ आजाद है, या रिजलू का हुर्रुन, तेरा पांव आजाद है, तो यद और रिजल इसके साथ तो पूरे बदन को ताबीर नहीं किया जाता अरबी जुबान में, लिहाजा इस सूरत में आजादी वाकई नहीं होगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में भी आजादी वाकई हो जाएगी। और साहिब हिदायत ने बताया कि इसके अंदर जो इख्तिलाफ है, यानी ऐसा उज्व जिसके साथ पूरे बदन को ताबीर नहीं किया जाता, इसमें हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक आजादी वाकई नहीं होगी और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक आजादी वाकई हो जाएगी। तो ये जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ है, ये उसी इख्तिलाफ की तरह है जो तलाक के मसले में गुजरा था, और वहां हमने खूब तफसील बयान की थी कि उनके नजदीक अगर ऐसे उज्व को खावन तलाक देगा तो पूरी औरत पर ही तलाक वाकई हो जाएगी, जबकि हमारे नजदीक अगर ऐसे उज्व को तलाक देगा तो तलाक वाकई नहीं होगी। तो वहां तफसील बयान हुई थी। साहिब हिदायत फरमाते हैं बेआईनी ही वही तफसील जो तलाक के मसले में थी, वही तफसील यहां आजादी के मसले में भी है भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि आजादी के जो किनायात हैं वो अल्फाज हैं जिनके अंदर आजादी का माना भी होता है और उसके अलावा दूसरा माना भी होता है, लिहाजा वहां पर आका की नीयत जरूरी है। अगर आका नीयत करेगा तो आजादी वाकई होगी, अगर आका नीयत नहीं करेगा तो आजादी वाकई नहीं होगी। मसलन आका अपने गुलाम से कहता है ला मिल्क ली अलैका, मेरी तुम्हारे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं है, तो इसका यह माना भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब मेरी तुम्हारे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं, और यह माना भी हो सकता है मैंने तुम्हें बेच दिया है, मेरी तुम्हारे ऊपर कोई मिल्कियत नहीं। तो यहां आजादी के अलावा दूसरा माना भी मौजूद है, लिहाजा तायीन के लिए नीयत जरूरी है। तो आका आजादी की नीयत करेगा तो ला मिल का ली अलई का इस जुमले से गुलाम आजाद हो जाएगा, और अगर आका आजादी की नीयत नहीं करेगा तो इससे गुलाम आजाद नहीं होगा। और यही हुक्म है तमाम किनायात का भी कि उनके अंदर आका आजादी की नीयत करेगा तो आजादी साबित होगी, अगर नीयत नहीं करेगा तो आजादी भी साबित नहीं होगी। फिर साहिब हिदाया ने आजादी के कुछ किनायात जिक्र फरमाए, मसलन आका अपने गुलाम से कहता है खरज तमीम मिल्की, तू मेरी मिल्कियत से निकल गया। अब मिल्कियत से निकलना जो है वो बेचने के जरिए भी हो सकता है और आजादी के जरिए भी, तो इसमें आजादी वाला माना भी है और दूसरा माना भी है, लिहाजा यहां पर भी आका की नीयत जरूरी है। या इसी तरह आका अपने गुलाम से कहता है ला सबील अली अलैका, मेरा तुम पर कोई रास्ता नहीं है, माना यह है मेरा तुम पर कोई तसर्रुफ नहीं है, मैं अब तुमसे नफा नहीं उठा सकता। तो इसके अंदर भी यह एहतमाल है कि मेरा तुम पर कोई तसर्रुफ नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बेच चुका हूं या मैं तुम्हें मुकातब बना चुका हूं, या ये माना भी हो सकता है कि मेरा तुम पर कोई तसर्रुफ नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। तो लिहाजा ये भी किनाया है भाई आजादी से, इसमें भी नीयत जरूरी है। और इसी तरह वला रिक्कली अलैका, मेरी तुम्हारे ऊपर कोई गुलामी नहीं है। मैंने बताया रिकियत बोलकर मिल्कियत मुराद है, मेरी तुम्हारे ऊपर मिल्कियत नहीं है, मिल्कियत नहीं है तो इसमें एहतमाल है आजादी का भी एहतमाल है और बेचने का या मुकातब बनाने का भी एहतमाल है। और इसी तरह आका अपने गुलाम से कहता है खल्लई तु सबीलका, मैंने तुम्हारा रास्ता खाली छोड़ दिया, यानी मेरा अब तुम्हारे ऊपर कोई रास्ता और कोई तसर्रुफ वगैरह नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें बेच दिया है या मैंने तुम्हें मुकातब बना दिया है या मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। तो देखो इसमें कई एहतमाल आ गए, तो लिहाजा आजादी के लिए इसमें नीयत का होना जरूरी है। और इसी तरह अगर बांदी से कहा आका ने कद अतलक तू की कि मैंने तुझे आजाद छोड़ दिया, तो ये भी खल्लई तू सबीलकी के दर्जे में है। कद अतलक तू की, मैंने तुझे आजाद छोड़ दिया, ये इसी दर्जे में है जैसे आका ने बांदी से कहा हो खल्लई तू सबीलकी, मैंने तेरा रास्ता खाली छोड़ दिया। और खल्लई तू सबीलकी ये तो किनाया है, तो मालूम हुआ कद अतलक तू की ये भी किनाया है आजादी से, तो इसमें भी नीयत होना जरूरी है भाई। हां अलबत्ता अगर आका अपनी बांदी से कहता है तलक तू की, मैंने तुझे तलाक दे दी, और नीयत करता है आजादी की, कहते हैं फिर आजादी साबित नहीं होगी, नीयत करने से भी आजादी साबित नहीं होगी। वजह यह है कि यह तलाक का लफ्ज जो है अगरचे इसका माना भी आजाद करना है लेकिन यह लफ्ज तलाक देने में सरीह हो चुका है, तो अब इससे तलाक ही साबित हो सकती है, आजादी साबित नहीं हो सकती। चाहे नियत कर ले आका फिर भी इससे आजादी साबित नहीं हो सकती। और अगर आका ने अपने गुलाम से कहा ला सुल्तान अली अलैका, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं है, तो सुल्तान से क्या मुराद है कब्जा, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं है, तो कहते हैं इस सूरत में अगर आका आजादी की नीयत कर भी ले फिर भी आजादी वाकई नहीं होगी। वजह यह कि इसके अंदर सिर्फ कब्जे की नफी हो रही है और गुलामी में जरूरी होता है कि मिल्कियत खत्म हो गुलाम पर से, तो कब्जे के खत्म होने से मिल्कियत का खत्म होना लाजिम नहीं आता, इसलिए क्योंकि जब कोई शख्स अपने गुलाम से अक्दे किताबत कर लेता है तो अब वो जो मुकातब है वो आजाद आदमी की तरह हो गया, आका का उस पर कब्जा खत्म हो गया, आका उससे खिदमत नहीं ले सकता, आका उसका जबरी निकाह नहीं करवा सकता, और अगर बांदी है तो आका उससे सोहबत नहीं कर सकता, हालांकि वो मुकातब हैं अभी भी ममलूक हैं। तो मालूम हुआ कब्जे के खत्म होने से मिल्कियत का खत्म होना लाजिम नहीं आता, लिहाजा ला सुल्तान अली अलैका इस जुमले के अंदर आका आजादी की नीयत कर भी ले तो भी आजादी साबित नहीं होगी। जबकि इसके मुकाबले में आका अगर अपने गुलाम से कहता है ला सबील अली अलैका, मेरा तुम पर कोई रास्ता नहीं है, यानी मेरा तुम पर कोई तसर्रुफ नहीं है, तो इस सूरत के अंदर यहां मुतलकन रास्ते की नफी की जा रही है, यानी हर एतबार से रास्ते की नफी की जा रही है, और हर एतबार से रास्ते की नफी तब ही हो सकती है जब आका की गुलाम पर मिल्कियत ना रहे। अगर मिल्कियत है चाहे मुकातब ही क्यों ना हो उस पर आका को राह होती है, आका उससे बदले किताबत का मुतालबा करता है भाई। तो मालूम हुआ कि ला सबील अली अलै की, इसमें तो आजादी की नीयत की जाए तो आजादी वाकई हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मुतलकन रास्ते की नफी की जा रही है और मुतलकन रास्ते की नफी मिल्कियत की नफी से होगा भाई, मिल्कियत की नफी से होगा। अगर मिल्कियत खत्म होगी तो गुलाम आजाद हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलौ قال هذا ابني وثبت على ذلك عتق ومعنى المسألة إذا كان يولد مثله لمثله وإذا كان لا يولد مثله لمثله ذكره بعد هذا। सूरत मसला ये, आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हाजा बनी, ये मेरा बेटा है, हाजा ए बनी, ये मेरा बेटा है। तवज्जो है, इबन का हमजा वसली है तो दरमियान इबारत में गिर जाएगा, हाजा बनी ये मेरा बेटा है। तो आका ने अपने गुलाम से कहा हाजा बनी ये मेरा बेटा है, और आका इस पर साबित रहा, आका इसी बात पर जमा रहा। यानी आका ये नहीं कहता कि ये जो मैंने इसको अपना बेटा करार दिया है ये सिर्फ इज्जत के तौर पर या मोहब्बत के तौर पर मैंने इसको बेटा करार दिया है, या ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हुई है, बल्कि इसी बात पर जमा रहता है कि ये मेरा बेटा है। तो इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा, गुलाम आजाद हो जाएगा। हासिल कलाम क्या हुआ कि आका अगर अपने गुलाम से कहे हाजा बनी ये मेरा बेटा है, और आका फिर इसी पर जमा रहे, यानी ये नहीं कहता कि ये मैंने इज्जत के तौर पर कहा है या ये मैंने गलती से कह दिया है, बल्कि अपनी इसी बात पर जमा रहता है, तो इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा। और साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि यह मसला उस सूरत में है जब इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सके, यानी आका और गुलाम की उम्र में इतना फर्क होना चाहिए कि आका बाप की जगह हो और गुलाम बेटे की जगह हो उम्र के एतबार से। तो अगर आका और गुलाम की उम्र में इतना फर्क है कि दोनों के दरमियान बाप बेटे वाला रिश्ता मुमकिन है, तो फिर इस सूरत में यह गुलाम आजाद हो जाएगा। और अगर दोनों की उम्र में इतना फर्क नहीं है, मसलन आका भी 40 साल का है और वो गुलाम भी 40 साल का है, या वो गुलाम आका से भी बड़ा है भाई, तो इस जैसा गुलाम तो इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता भाई। तो वो मसला साहिबे हिदाया आगे चंद सत्रों के बाद जिक्र फरमाएंगे, मतन के अंदर वो आएगा और साहिबे हिदाया फिर उसकी तफसील बयान फरमाएंगे। तो यहां कौन सी सूरत जिक्र है, जब इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सके। तो कहते हैं वलौ काला, और अगर आका ने कहा हाजा बनी ये मेरा बेटा है, वसा बता अला जालिका और इसी बात पर जमा रहा, आताका तो गुलाम आजाद हो जाएगा। वह मानल मसअलती, और इस मसले का माना यह है, साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि इस मसले का माना यह है, इदा काना यूलद मिसलुहु लिमिसलिही, कि जब इस जैसा गुलाम जो है उसको जन्म दिया जाए इस जैसे कहने वाले के लिए, यानी इस जैसा गुलाम इस जैसे कहने वाले का बेटा हो सके। तो कहते हैं वह मानल मसअलती, और इस मसले का माना यह है कि इदा कान यूलदु मिसलुहु लिमिसलिही, कि जब इस जैसे गुलाम को इस जैसे आका के लिए जन्म दिया जा सके, वह इदा कान ला यूलदु मिसलुहु लिमिसलिही, और जब गुलाम ऐसा हो कि इस जैसे गुलाम को इस जैसे आका के लिए जन्म नहीं दिया जा सकता, यानी इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, उनकी उम्रों में इतना फर्क नहीं है, तो ज़ाकारहु बादा हाजा, तो उसको साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया है इसके बाद। ये जो मतन में जिक्र फरमाया ये वो सूरत है जब इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सके, और वो सूरत जिसमें गुलाम की और आका की उम्र ऐसी है कि इस जैसा गुलाम तो इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, यानी मसलन दोनों की उम्र बराबर है या फर्क है लेकिन बहुत थोड़ा फर्क है, या गुलाम आका से भी बड़ा है, तो इस सूरत में तो यह गुलाम इस आका का बेटा नहीं हो सकता, तो वो मसला कहते हैं आगे साहिब कुदूरी मतन में जिक्र फरमाएंगे, आगे चंद सत्रों के बाद ही वो मसला आगे आ जाएगा। तो कहते हैं वईदा कान लायूलदु मिसलुहु लिमिसलिही, और जब ऐसे गुलाम जो है इस जैसे आका के लिए उसको जन्म न दिया जा सके, ज़करहु बादा हाजा, तो उसको साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया है इसके बाद, सुम इल्लम यकुन लिल अब्दिन नसबुन मारूफुन यसबुतुन नसबुहु मिनहु। भाई आका ने अपने गुलाम से क्या कहा, हाजबनी, और इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सकता है, तो ये गुलाम आजाद तो हो जाएगा। अलबत्ता क्या इस गुलाम को इस आका का बेटा शुमार किया जाएगा? कहते हैं इस गुलाम के नसब को देखा जाएगा। अगर इस गुलाम के नसब का सबको पता है कि ये तो मसलन फुला आदमी का बेटा है, तो फिर इस सूरत में तो इस गुलाम का नसब मारूफ है, सबको पता है, तो नसब तो साबित नहीं होगा, अलबत्ता गुलाम आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर गुलाम ऐसा है कि उसके नसब का किसी को पता नहीं, उसके नसब का किसी को पता नहीं, मसलन आका की एक बांदी थी, उस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और मां जब बांदी थी तो बच्चा भी गुलाम, और आका ने इकरार नहीं किया ये मेरी औलाद है, तो अब इस बच्चे के नसब का किसी को पता नहीं, और अब आका कई सालों बाद जाकर कहता है ये मेरा बेटा है, तो अब ये ऐसा गुलाम है जिसके नसब का लोगों को इलम नहीं है, लिहाजा इस सूरत में इस गुलाम का नसब भी साबित हो जाएगा, अब ये इस शख्स का बेटा शुमार होगा और मरने के बाद ये उसका वारिस बनेगा। भाई तो ये बेटा शुमार होगा, आजाद भी हो जाएगा और बेटा भी शुमार होगा। तो कहते हैं सुम्म इल्लम यकुन लिल अब्दि नसबुन मारूफुन, और फिर अगर इस गुलाम का कोई मारूफ नसब नहीं है, तो यसबुतु नसबुहु मिनहु, तो इस गुलाम का नसब भी उस आका से साबित हो जाएगा। लि अन्न विलायत दावती बिल मिल्की साबितुन, लि अन्न विलायत दावती बिल मिल्की, इसलिए क्योंकि मालिक होने की वजह से दावे की विलायत जो है साबितुन, वो साबित है, ये आका का गुलाम है, आका का ममलूक है, तो अपना ममलूक होने की वजह से आका को विलायत हासिल है, वो नसब का दावा कर सकता है, ये नसब का दावा कर सकता है। मसलन आका की एक बांदी है और उस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो आका कह सकता है ये मेरी औलाद है, क्योंकि बांदी के साथ आका के लिए सोहबत जायज होती है। तो कहते हैं लिए अन्न विलायत दावती बिल मिल की साबितुन, इसलिए क्योंकि मिल्कियत की वजह से नसब के दावे की जो विलायत है साबितुन, वो इस आका के लिए साबित है। तो ये दावत भाई दाल के फतहा के साथ मैंने पढ़ा, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि नसब के अंदर खास तौर पर दावा हो तो उसको दावतुन यानी दाल के कसरा के साथ पढ़ा जाता है, तो आप जैसे भी पढ़ना चाहें दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं, तो आप यूं भी पढ़ सकते हैं लि अन्न विलायत दावती बिल मिल की साबितुन, इसलिए क्योंकि ममलूक होने की वजह से आका के लिए नसब के दावे की विलायत साबितुन साबित है, वो नसब का दावा कर सकता है। वल अब्द मुहताजुन इलन नसबी, और गुलाम भी मोहताज है नसब का, उसके नसब का किसी को पता नहीं तो वह नसब का मोहताज है। फयसबुतु नसबुहु मिनहु, तो इस गुलाम का नसब इस आका से साबित हो जाएगा। वह ईदा सबता आतका, और जब नसब साबित हो जाएगा तो गुलाम आजाद हो जाएगा। लिअन्नहु यस्तनिदुन नसबु इला वक्तिल उलूकी, इसलिए क्योंकि नसब जो है उसकी निस्बत की जाएगी इला वक्तिल उलूकी, उलूक कहते हैं हमल ठहरना, इस नसब की निस्बत की जाएगी हमल ठहरने के वक्त की तरफ। भाई जब आका ने कह दिया ये गुलाम मेरी औलाद है मेरा बेटा है और इस गुलाम का नसब साबित नहीं है, तो लिहाजा ये मोहताज हुआ नसब का, तो नसब साबित हो जाएगा और ये गुलाम इस आका का बेटा शुमार होगा। और क्या ये बेटा अभी से शुमार होगा या जिस वक्त से हमल ठहरा था उस वक्त से ही बेटा शुमार होगा? उस वक्त से ही बेटा शुमार होगा। तो जब उस वक्त से ही बेटा है तो मालूम हुआ ये आजाद है भाई। तो कहते हैं वह ईदा सा बता आता का, और जब नसब साबित हो जाएगा तो गुलाम आजाद होगा। लिअन्नहु यस्तनिदुन नसबु, इसलिए क्योंकि ये नसब मनसूब होगा, या यूं कहें कि इस नसब की निस्बत होगी इला वक्तिल उलूकी, हमल के ठहरने के वक्त की तरफ। वह इनका न लहू नसब मारूफुन, और अगर ये गुलाम ऐसा है कि इसका नसब मारूफ है कि सबको पता है ये तो फलां का बेटा है, मसलन आका ने बांदी का किसी से निकाह करवाया था, तो अब जो बांदी का खावंद है ये उसकी औलाद है भाई। तो कहते हैं वह इनका न लहू नसब मारूफ, और अगर गुलाम जो है उसका नसब मारूफ है यानी सबको इलम है, तो ला यसबुतु नसबहु मिनहु, तो अब इस सूरत के अंदर आका से इसका नसब साबित नहीं होगा, लितअज़्ज़ुरी नामुमकिन होने की वजह से, क्योंकि अब आका से नसब का साबित होना मुतअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है भाई। फिर सुन लें मसला ये, आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हाज़ा बनी, ये मेरा बेटा है, और इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सकता है, तो इस सूरत में ये गुलाम आजाद हो जाएगा। अलबत्ता नसब साबित होगा या नसब साबित नहीं होगा, इसके अंदर उस गुलाम के नसब को देखेंगे, अगर इस गुलाम के नसब का लोगों को पता नहीं है तो फिर तो नसब भी साबित हो जाएगा, और अगर नसब का पता है तो फिर नसब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि एक शख्स दो अफराद की औलाद नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं वह इनका न लहू नसब मारूफ, और अगर इस गुलाम का नसब मारूफ है, ला यसबुतु नसबहु मिनहु लिताअज़्ज़ुरी, तो फिर अब इस सूरत में इस आका से उसका नसब साबित नहीं हो सकता, लिताअज़्ज़ुरी मुमकिन न होने की वजह से। वयातिकु इमालन लिलफ़्ज़िन फी मजाज़िही इंदा ताअज़्ज़ुरी इमालिही बिहकीकतिही, भाई एक सूरत में तो नसब भी साबित हो जाएगा, और नसब साबित होगा तो वो गुलाम आजाद होगा, लेकिन अगर गुलाम का नसब मारूफ है और आका ने क्या कहा हा आजाबनी, ये मेरा बेटा है भाई, तो इसका तो नसब मारूफ है, तो इस सूरत में बेटा तो हो नहीं सकता, यानी हकीकी माना पर तो अमल नहीं हो सकता, और जब लफ्ज के हकीकी माना पर अमल ना हो सके तो फिर मजाजी माना साबित हो जाता है, और मजाजी माना क्या है हा आजाबनी का, कि यह आजाद है। हाजा बनी का हकीकी माना क्या, ये मेरा बेटा है, और मजाजी माना क्या, ये आजाद है, क्योंकि जो भी बेटा होगा वो हमेशा आजाद होगा भाई। तो जब हकीकी माना पर अमल मुमकिन ना हो तो फिर मजाजी माना साबित हो जाता है। तो यहां पर भी आका ने गुलाम से क्या कहा हाजा बनी, ये मेरा बेटा है, और गुलाम का तो नसब पहले से सबको मालूम है, तो ये आका का बेटा तो नहीं हो सकता, यानी हकीकी माना यहां मुमकिन नहीं। जब हकीकी माना मुमकिन नहीं तो फिर मजाजी माना साबित हो जाएगा, और हाजबनी इसका मजाजी माना क्या है, ये आजाद है। हाजबनी का हकीकी माना ये मेरा बेटा है, और मजाजी माना ये आजाद है, तो मजाजी माना साबित हो जाएगा। तो कहते हैं वयातिकु इमालन लिलफ़्ज़िन फी मजाजिही, वयातिकु और गुलाम आजाद हो जाएगा, ये वो सूरत जिक्र हो रही है जब नसब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाम का नसब मारूफ है। तो कहते हैं इस सूरत में वयातिकु गुलाम आजाद हो जाएगा इमालन लिलफ़्ज़िन फी मजाजिही, लफ्ज को अपने मजाज में अमल देते हुए, इंद तअज़्ज़ुरी इमालिही बिहकीकतिही, जब मुमकिन न रहे लफ्ज को अमल देना अपनी हकीकत के साथ, जब लफ्ज को अपनी हकीकत के साथ अमल देना मुमकिन ना रहे तो फिर मजाजी माना साबित हो जाता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, तो कहते हैं वह इन का न लहू नसब मारूफ उन ला यसबुतु नसबहु मिनहु लिताअज़्ज़ुरी, और अगर उस गुलाम का नसब मारूफ है तो फिर आका से उसका नसब साबित नहीं होगा, लिताअज़्ज़ुरी मुमकिन न होने की वजह से। वह यातिकु और गुलाम आजाद हो जाएगा इमालन लिलफ़्ज़िन फी मजाजिही, लफ्ज को अपने मजाज में अमल देते हुए, इंद तअज़्ज़ुरी इमालिही बिहकीकतिही, जब लफ्ज को अपनी हकीकत पर अमल देना मुमकिन न रहे तो इस सूरत में फिर उसको अपने मजाज में अमल दिया जाएगा, यानी उसका मजाजी माना साबित हो जाएगा। वजहुल मजाजी नस्कुरुहु मिन बादु इंशा अल्लाह ताला, और मजाज की जो वजह है हम उसको बाद में इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। ये चंद सत्रों के बाद मसला आएगा। ये तो वो मसला था, आका ने गुलाम से क्या कहा हाजा बनी, और इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सकता है, और अगर इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, आका ने लफ्ज वही कहे हाजा बनी, लेकिन इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, ये चंद सत्रों के बाद ये मसला आएगा, और वहां साहिबे हिदायत तफसील बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं वजहुल मजाजी, और मजाज की जो वजह है, नस्कुरुहु मिन बादु इंशा अल्लाह ताला, वो हम बाद में इंशा अल्लाह जिक्र करेंगे। वलौ काला हादा मौला या औ या मौला या अतका, सूरत मसला ये, आका ने अपने गुलाम से कहा हाजा मौलाया, ये मेरा मौला है, हाजा मौलाया ये मेरा मौला है, या आका ने अपने गुलाम को निदा दी या मौलाया ए मेरे मौला, तो इस सूरत में हमारे फुकहा फरमाते हैं कि गुलाम आजाद हो जाएगा। तवज्जो है, आका ने अपने गुलाम को क्या कहा, हाजा मौलाया ये मेरा मौला है, या निदा दी उसको या मौलाया ए मेरे मौला, तो इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा। कहते हैं वलौ काला, और अगर आका ने अपने गुलाम से कहा हादा मौलाया ये मेरा मौला है, औ या मौलाया, या आका ने गुलाम से कहा ए मेरे मौला, यानी उसको निदा दी ए मेरे मौला के लफ्ज के साथ आताका, तो गुलाम आजाद हो जाएगा। अम्मल अव्वलु, तो यहां दो लफ्ज जिक्र हुए भाई, एक हाजा मौलाया, ये जुमला खबरिया है, हाजा है मुब्तदा और मौलाया है उसकी खबर, तो एक ये जुमला खबरिया जिक्र हुआ और एक आगे जुमला इंशाइया यानी निदा जिक्र हुई या मौलाया। तो अब इनमें से पहले जो है हाजा मौलाया, उसको साहिबे हिदाया बयान फरमाएंगे, हाजा मौलाया ये मेरा मौला है। कहते हैं इस सूरत में गुलाम क्यों आजाद होगा, अब वो वजह जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं अम्मल अव्वलु, तो जो पहला लफ्ज है यानी हाजा मौलाया, ये जो लफ्ज है इसमें गुलाम आजाद होगा, फली अन अस्मल मौला, इसलिए क्योंकि मौला का इसम जो है वह इनकान यंतजिमुन नासिरा, यहां से माना बयान फरमाएंगे साहिब हिदायत, आपको बतलाएंगे कि लफ्ज मौला के कई मानी है भाई, लेकिन यहां पर यह मौतक के माना में है, यानी वो गुलाम जिसको आजाद किया गया हो। इस मौला के कई मानी है भाई, लेकिन यहां पर और कोई माना मुनासिब नहीं बनता, यहां मौला का माना मौतक ही के करना पड़ेगा। तो गोया आका ने जब कहा हाजा मौलाया, तो गोया आका ये कह रहा है कि ये मेरा मौतक है, ये मेरा आजाद किया हुआ गुलाम है, और जब आका खुद कह रहा है ये मेरा आजाद किया हुआ गुलाम है, तो इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा भाई। तो आगे साहिबे हिदाया इस मौला के मानी बयान फरमाएंगे, साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि मौला का लफ्ज अरबी जुबान में मददगार के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक शख्स दूसरे शख्स की मदद करे तो अरबी में कहते हैं हाजा मौलाया, ये मेरा मददगार है, इसने मेरी मदद की है। इसी तरह अगर चचा का बेटा हो तो उसको भी मौला कहते हैं, हाजा मौलाया ये मेरा चचा का बेटा है। इसी तरह याद रखो उस शख्स को भी मौला कहते अरबी जुबान में जो अक्दे मुआलात कर लेता था। अक्दे मुआलात ये कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से आकर अकद करता था कि मैं तुमसे अक्दे मुआलात करता हूं, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद के तुम मुस्तहिक होगे, मेरी सारी मीरास तुम्हें मिलेगी, लेकिन बदले में अगर मेरे से कोई जिनायत हो गई, मेरे से गलती से कोई मुसलमान या कोई शख्स कत्ल हो गया या किसी का हाथ या पांव कट गया, तो तुम वो दियत अदा करोगे, उसका जमान तुम अदा करोगे। तो ये जो दो अफराद के दरमियान अकद होता था कि एक फर्द दूसरे की मीरास का मुस्तहिक होता था और दूसरा उसकी तरफ से दियत वगैरह का जामिन हो जाता था, इसको अक्दे मुआलात कहते थे। क्या कहते थे? अक्दे मुआलात। और याद रखो ये अक्दे मुआलात नौ मुस्लिम किया करते थे। वजह यह कि वो दूसरे शख्स से क्या अकद कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद के मालिक तुम होगे, मेरी सारी मीरास तुम्हें मिलेगी। तो ये तो उसी सूरत में हो सकता है जब उस अकद करने वाले के अपने कोई अजीज व अकारिब ना हो भाई। शरीयत के अंदर तो वारिस मुकर्रर हैं भाई, जब वारिस मौजूद हैं तो माल उन्हीं को मिलेगा, लेकिन ये दूसरे शख्स से क्या अकद कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरा सारा माल मीरास तुम्हें मिलेगा भाई। तो ये अकदे मुआलात वो शख्स किया करता था जो कोई नया मुसलमान हुआ है, और ये जो नौ मुस्लिम है इनके बाकी रिश्तेदार हैं वो काफिर हैं, अब वो तो इसके वारिस नहीं बन सकते, तो ये किसी शख्स से अकदे मुआलात कर लेता था। तो ये जो अकद करने वाला है इसको भी अरबी जुबान में मौला कहते हैं, मौलाए मुआलात भाई। क्या कहते हैं? मौलाए मुआलात। बात समझ में आ गई? अकदे मुआलात किसे कहते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स से अकद कर लेता, कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद के तुम हकदार होगे, लेकिन बदले में अगर जिंदगी में मुझसे कोई जिनायत हो गई तो जमान तुम अदा करोगे। तो इस अकद को क्या कहते थे? अकद मुआलात। और यह अकद कौन किया करते थे? कोई नो मुस्लिम जिसके अजीज व अकारिब यहां पर मौजूद नहीं है, मुसलमान नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये जो अकद मुआलात करने वाला होता इसको भी मौला कहते थे। मौला के मानी बयान फरमा रहे हैं साहिबे हिदाया। मौला का एक माना मददगार के है, इसी तरह मौला चचा के बेटे को भी कहते हैं, और इसी तरह ये जो अकद मुआलात करने वाला होता इसको भी मौला कहते थे। और इसी तरह आगे साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि वो शख्स जो किसी गुलाम को आजाद कर दे तो ये आजाद करने वाला यानी मुअतिक इसको भी अरबी जुबान में मौला कहते हैं, और जिस गुलाम को इसने आजाद किया है उसको भी मौला कहते हैं। तो मुअतिक को भी अरबी जुबान में मौला कहते हैं और मुअतक यानी वो आजाद शुदा गुलाम उसको भी मौला कहते हैं। लेकिन फिर उलमा इन दोनों में फर्क करने के लिए मुअतिक के साथ आला का लफ्ज बढ़ा देते हैं और मुअतक जो है जिसको आजाद किया गया है उसके साथ असफल का लफ्ज बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ गई? उलमा को मसला बयान करना होता है, अब मुअतिक को भी मौला कहें मुअतक को भी मौला कहें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा मौला मुराद है। तो फिर दोनों में फर्क करने के लिए मुअतिक के साथ आला का लफ्ज बढ़ा देते हैं, उसको मौला आला कहते हैं, और जो मुअतक है वो गुलाम जिसको इसने आजाद किया है उसके साथ असफल का लफ्ज बढ़ा देते हैं उसे मौला असफल कहते हैं। तो मुअतिक भी मौला है और मुअतक भी मौला है, और दोनों में से आला कौन है? मुअतिक जो है वो आला है और मुअतक जो है वो अदना है, तो इसलिए मुअतिक को मौला आला कहते हैं और मुअतक को मौला असफल कहते हैं। तो मौला का लफ्ज मुअतिक को भी शामिल है और मुअतक को भी शामिल है। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि मौला के कई मानी आते हैं, मौला के माने मददगार के भी, मौला के माने चचा के बेटे के भी, मौला के माने अकद मुआलात करने वाला जो है उसको भी मौला कहते हैं, और मौला का माना मुअतिक के भी, और मौला का माना मुअतक के भी। लेकिन यहां जो आका ने अपने गुलाम से कहा हाजा मौलाया, ये मेरा मौला है, यहां मुअतक ही का माना मुनासिब बनता है और कोई माना यहां मुनासिब नहीं बनता। तो हाजा मौलाया का क्या माना हुआ? ये मेरा मौला है यानी ये मेरा मुअतक है, मेरा आजाद करदा गुलाम है। तो इस लफ्ज से गुलाम आजाद हो जाएगा क्योंकि यहां मौला का और कोई माना मुनासिब नहीं बनता। तो जब आका खुद कह रहा है ये मेरा आजाद करदा गुलाम है तो मालूम हुआ वो इसको आजाद कर चुका है, तो इससे गुलाम आजाद हो जाएगा, उसकी आजादी साबित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अम्मल अव्वलू, तो जो पहला लफ्ज है, भाई मतन में दो लफ्ज आए थे हाजा मौलाया और दूसरा लफ्ज था या मौलाया। या मौलाया को आगे जिक्र करेंगे साहिबे हिदाया, अभी सिर्फ पहला लफ्ज। पहला लफ्ज कौन सा? हाजा मौलाया, उसकी तफसील बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं अम्मल अव्वलू, तो पहला लफ्ज जो है यानी हाजा मौलाया का लफ्ज जो है फली अनस्मल मौला, इसलिए क्योंकि मौला का इसम जो है वह इन काना यंतजिमुन नासिरा, अगरचे ये मददगार को भी शामिल है, वबनल अम्मी और चचा के बेटे को भी शामिल है, वल मुआलात फिद्दीनी और ये मुआलात फिद्दीन को भी शामिल है। भाई याद रखो ये जो अक़द मुआलात करते थे इस अक़द को मुआलात फिद्दीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुआलात फिद्दीन। वजह यह कि ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अक़द करता था, जो अकद करने वाला है उसके अपने अजीज व अकारिब का पता ही नहीं, या वो काफिर हैं भाई, और अब वो किसी दूसरे मुसलमान के साथ ये अकद कर रहा है जिसकी कौम और कबीला वहां मौजूद है। तो ये अकद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से किया करता, इसलिए इसको मुआलात फिर दीन कहते हैं, यानी दीन की वजह से यह अकद मुआलात किया जा रहा है भाई। तो कहते हैं मौला का लफ्ज मददगार को भी शामिल है, व बनल अम्मी और चचा के बेटे को भी, वल मुआलात फिद्दीन और दीन के अंदर मुआलात को भी ये शामिल है, वल आला वल असफल फिल आताकति और वो जो आला है और वो जो अदना है फिल आताकति आजादी में, यानी ये उनको भी शामिल है। ये मौला का लफ्ज मौला आला को भी शामिल है यानी मुअतिक को, और मौला असफल को भी शामिल है यानी मुअतक को भी। तो कहते हैं वल आला वल असफल फिल आताकति, और ये मौला का लफ्ज जो है आजादी के अंदर जो आला है यानी मुअतक उसको भी शामिल है, और जो अदना है यानी मुअतक उसको भी शामिल है। इल्ला अन्नहु तायन अल असफल, मगर ये कि इससे असफल ही मुतायन है। किस लफ्ज की बात चल रही है? हाजा मौलाया, इसके अंदर मौला का लफ्ज आया और मौला के कई मानी आते हैं जी। लेकिन यहां पर असफल ही मुतायन है। साहिब हिदाया क्या फरमा रहे हैं? इल्ला अन्नहु तायन अल असफल, कि यहां पर ये जो मौला का लफ्ज आया इसका माना मौलाए असफल ही मुतायन है, यानी इससे मौतक ही मुराद ले सकते हैं और मानी यहां मुनासिब नहीं बनते। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु तायन अल असफल, मगर ये कि इस यहां पर इसे मौलाए असफल ही मुतायन है। फसारा कस्मिन खासिन लहू, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कि ये इसका खास इसम हो। भाई इधर देखिए, साहिब हिदायत दलील बयान फरमा रहे हैं कि मौला के लफ्ज के कई मानी आते हैं, लेकिन यहां पर मौला से मुअतक ही मुराद ले सकते हैं और मानी मुनासिब नहीं। जब और मानी मुनासिब नहीं तो यूं समझो हाजा मौलाया, इस जुमले के अंदर ये जो मौला का लफ्ज आ रहा है ये लफ्ज खास है मुअतक के साथ, ये लफ्ज खास है मुअतक के साथ, क्योंकि और मानी यहां मुनासिब नहीं बनते। जब सिर्फ मौतक माना मुनासिब बनता है तो यूं समझो इस लफ्ज का माना मौतक ही है और कोई माना है ही नहीं, यूं समझो जी। और मानी यहां लेना मुनासिब नहीं तो यूं समझो ये ऐसा इसम जिक्र किया आका ने जो मौतक ही के साथ खास है, इसका माना मौतक ही है और कोई माना है ही नहीं, यूं समझो भाई। तो कहते हैं फसारा कस्मिन खासिन लहू, तो ये असफल के लिए खास इसम की तरह हो गया। वहादा लिअन्नल मौला, अब वजह जिक्र फरमा रहे हैं कि बाकी मानी यहां क्यों मुनासिब नहीं है, यहां मौला का लफ्ज मौला असफल ही के लिए क्यों मुतायन है, आपने क्यों इसको मौतक के लिए इसमें खास करार दे दिया। तो अब वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वहाद अली अन्नल मौला ला यस्तंसिरु बिममलू की ही आदतं वलिल अब्दी नसबु मारूफुन फंतफल अव्वल वस्सानी। कहते हैं भाई देखो, यहां मौला का पहला माना है मददगार, लेकिन यहां मौला के माने मददगार के नहीं ले सकते। आका दूसरों को कहे हादा मौलाया, ये मेरा मददगार है, ये तो हार की बात है, ये तो शर्म की बात है, आप गुलाम को अपना मददगार करार दे रहे हैं। गुलाम आपकी खिदमत तो कर रहा है लेकिन मुश्किल मसाइल में वो आपका मददगार हो, ऐसा नहीं। इंसान को जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, कोई बड़ा मसला उसके सामने आता है, तो वो अपने भाइयों से, अपनी औलाद से, अपने अजीजों अकारिब से मदद तलब करता है। गुलाम से मदद तलब करना इसको कोई भी पसंद नहीं करता भाई। तो मालूम हुआ यहां मौला का माना मददगार के नहीं कर सकते, क्योंकि आका आदतन अपने गुलाम से मदद तलब नहीं करता मुश्किल मसाइल में। और नीज यहां मौला का माना चचा का बेटा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह गुलाम उसके चचा का बेटा नहीं है, इस गुलाम का नसब मारूफ है भाई। कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से लिअन्नल मौला ला यस्तंसिरु बिममलूकी ही आदतन, इस्तंसरा भाई नसरा से है और सीन तलब के लिए आ गया। कहते हैं वहाजा, और ये इसलिए है लिअन्नल मौला ला यस्तंसिरु, क्योंकि आका मदद तलब नहीं करता, भी बमलू की ही आदतन अपने गुलाम से आदतन, आका अपने गुलाम से आदतन मदद तलब नहीं करता, तो लिहाजा इस मौला का माना मददगार के नहीं कर सकते। वलिल अब्दी नसब मारूफुन, और नीज इस गुलाम का नसब मारूफ है, सबको इसके नसब का पता है, ये फुला का बेटा है, ये तो इस आका के चचा का बेटा नहीं है, लिहाजा यहां मौला का माना चचा के बेटे के भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं वलिल अब्दी नसब मारूफुन, और इस गुलाम का नसब मारूफ है, फन तफल अव्वल वस्सानी, तो पहला माना भी मुंतफी हो गया, वस्सानी और दूसरा माना भी मुंतफी हो गया, ये दोनों माना यहां मौला के नहीं किए जा सकते। मददगार वाला माना भी नहीं, क्योंकि आका अपने गुलाम से मदद तलब नहीं करता। और नीस चचा का बेटा ये माना भी मौला के नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके चचा का बेटा नहीं है, इस गुलाम का नसब मारूफ है, सबको इलम है। तो कहते हैं फन तफल अव्वल वसानी, तो मौला का पहला माना वो भी मुंतफी हो गया, और दूसरा माना के यानी कि चचा का बेटा इसका माना किया जाए वो भी मुंतफी हो गया। वसालिसु नौउ मजाजिन, और तीसरा माना जो है वो एक किस्म का मजाज है। तीसरा माना क्या बयान किया था मौला का, मुआलात फिद दीन, यानी दीन के अंदर अक्दे मुआलात करने वाला जो है उसको भी मौला कहते हैं। कहते हैं भाई ये मजाजी माना है मौला का, ये मौला का मजाजी माना है। वजह यह कि मौला जो है इसका मादा वो लाम या है, मौला का मादा क्या है, वो लाम या, यानी वलयुन इसका मादा है भाई, यानी ये वलयुन से मुश्तक है भाई, और वलयुन का माना है करीब होना। वलयुन का क्या माना है, करीब होना। और ये जो जिसके साथ अक्दे मुआलात किया जा रहा है ना, तो ये नसब के एतबार से इसके करीब का है, दोनों का नसब अलग है, और नीज उसका इलाका और वतन भी कोई और है, तो वतन और जगह के एतबार से भी कुर्ब नहीं है। तो मालूम हुआ यहां दीन के एतबार से कुर्ब मुराद है कि दोनों मुसलमान हैं, और ये तो इसका मजाजी माना है, हकीकी माना नहीं, हकीकत में कुर्ब नहीं है बल्कि मजाजन यानी दीन के एतबार से कुर्ब यहां मौजूद है भाई। तो दीन के अंदर जो कुर्ब है ये मजाजी माना है, इसलिए क्योंकि हकीकी कुर्ब तो यह है कि इंसान किसी दूसरे के करीब हो नसब में, या कोई इंसान दूसरे इंसान के करीब हो वतन और जगह के एतबार से, तो यह है हकीकी कुर्ब। लेकिन यहां तो न जगह के एतबार से कुर्ब है और ना नसब के एतबार से कुर्ब है, तो यहां पर फिर इसको दीन के एतबार से करीबी मानना पड़ेगा। तो दीन के एतबार से करीब है, मालूम हुआ हकीकी कुर्ब मुराद नहीं है, मानवी कुर्ब मुराद है। जब मानवी कुर्ब मुराद है यह तो मजाजी माना हुआ भाई, हकीकी माना तो क्या है कि हकीकत में कुर्ब हो, लेकिन यहां हकीकत में कुर्ब नहीं है बल्कि मानवी एतबार से यानी दीन के एतबार से कुर्ब है, तो यह मजाजी माना हुआ भाई। और यहां हम जो बात कर रहे हैं हाजा मौलाया, यहां मौला के हकीकी माना की बात कर रहे हैं। वजह यह कि जब हकीकी माना मुमकिन हो तो फिर मजाजी माना मुराद नहीं लिया जाता भाई, मजाजी माना उस वक्त मुराद लिया जाता है जब हकीकी माना मुराद न लिया जा सके भाई, वहां कोई मानिअ आ जाए फिर मजाजी माना मुराद लिया जाता है। तो यहां तो हम मौला के हकीकी माना की बात कर रहे हैं, लिहाजा यहां पर मौला से मौला मुआलात भी हम मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसका मजाजी माना है भाई। तो कहते हैं वसाल सुनाओ मजाजिन, और ये जो तीसरा माना है ये एक किस्म का मजाज है। वल कलाम उली हकीकती ही, और कलाम जो है वो तो इस लफ्ज की हकीकत के बारे में हो रहा है, यहां पर बात जो हो रही है वो इस लफ्ज मौला के हकीकी माना के बारे में बात हो रही है। वल इजाफतु इलल अब्दि तुनाफी कौनहु मुअतिकन, भाई साहिब हिदाया ने मौला के पांच मानी बयान किए, एक माना मौला का बयान किया मददगार के, एक माना बयान किया चचा का बेटा, एक माना बयान किया वो जो अक्दे मुआलात करने वाला है दीन के अंदर, और एक माना है मुअतिक यानी आजाद करने वाला, और एक माना है मौतक यानी जिसको आजाद किया गया है। साहिब हिदाया ने बतलाया कि यहां इसका माना मौतक के करेंगे, बाकी चारों मानी यहां मुनासिब नहीं बनते। यहां मददगार का माना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि आका आदतन अपने ममलूक से मदद तलब नहीं करता। नीज यहां चचा का बेटा यह माना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि यह गुलाम उसके चचा का बेटा नहीं है, इस गुलाम का नसब सबको पता है, मारूफ है भाई। और नीज इस मौला का यहां माना मौला मुआलात के भी नहीं कर सकते, वो शख्स जिसने अक्दे मुआलात किया है वो माना भी यहां नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इसका मजाजी माना है, और यहां बात मौला के हकीकी माना की हो रही है। और चौथा माना है मौला का मुअतिक आजाद करने वाला यानी मौला आला, वो माना भी यहां पर नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि यह कलाम गुलाम से किया जा रहा है, ये किसी आजाद करने वाले से कलाम नहीं किया जा रहा बल्कि गुलाम से कलाम किया जा रहा है। गुलाम के बारे में आका कह रहा है हाजा मौलाया, तो गुलाम तो मुअतिक नहीं हो सकता भाई, गुलाम तो किसी चीज का मालिक ही नहीं होता, वो मुअतिक कैसे हो सकता है, आजाद करने वाला कैसे हो सकता है। तो मालूम हुआ यहां मौला का माना मौला आला के भी नहीं कर सकते, यानी मुअतिक के भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस कलाम की निस्बत किसकी तरफ कर रहा है आका, गुलाम की तरफ। तो कहते हैं वल इजाफतु इलल अब्दी, और इस कलाम की जो निस्बत हो रही है गुलाम की तरफ, तो नाफी कौन न हो मुअतिकन, ये इस बात के मुनाफी है कि ये गुलाम जो है मुअतिक हो, कि ये शख्स क्या हो मुअतिक हो, ये इस बात के मुनाफी है। फतायन अल मौलल असफलु, तो मौला असफल मुतायन हो गया, और तो कोई माना नहीं कर सकते, तो मौला असफल यहां मुतायन हो गया। तो हाजा मौलाया, इस जुमले के अंदर ये जो मौला का लफ्ज है इसका माना मौला असफल ही मुतायन है, कोई और माना यहां नहीं कर सकते। तो कहते हैं फतायन अल मौलल असफल, तो मौला असफल माना मुतायन हो गया। फल तहक बिस सरीह, तो ये लफ्ज मिल गया सरीह के साथ, यानी ये लफ्ज आजादी के अंदर अब सरीह हो गया, ये मौला का लफ्ज आजादी में सरीह हो गया यहां पर। हादा मौलाया, इस जुमले के अंदर यहां इसका और कोई माना नहीं किया जा सकता, और सरीह भी किसे कहते हैं, जहां और किसी माना का इहतेमाल ना हो। तो जब यहां और किसी माना का इहतेमाल नहीं, तो ये मौला का लफ्ज आजादी के अंदर सरीह हो गया, और वो लफ्ज जो आजादी के अंदर सरीह हो उसको जब आका अदा करेगा तो गुलाम हर हाल में आजाद हो जाएगा, वहां आका से नियत पूछने की भी जरूरत नहीं। तो कहते हैं फतायन अल मौलल असफल, तो इस लफ्ज का माना मौला असफल के मुतायन हो गया। फल तहक बिस सरीह, तो ये लफ्ज सरीह के साथ मिल गया, यानी अब यहां और किसी माना का इहतेमाल नहीं, तो इससे गुलाम आजाद हो जाएगा। वकदा इदा काल ली अमती हादिही मौलाती लिमा बैयन्ना, वकजा, और इसी तरह है हुक्म, इदा काल अली अमती ही, जब आका ने अपनी बांदी से कहा हाजी ही मौलाती, ये मेरी मौला है, वही मौला की मुअन्नस ले आए मौलात भाई गोलता के साथ, और फिर या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत कर दी, हाजी ही मौलाती, ये मेरी मौलात है। तो जैसे ये मेरा मौला कहने से गुलाम आजाद होता था, तो ये मेरी मौलात है जब बांदी को कहेगा तो वो भी आजाद हो जाएगी, क्योंकि मौला का यहां माना मौतक ही के करना पड़ेंगे और कोई माना मुनासिब नहीं बनता। तो कहते हैं वकदा इदा काल अली अमती ही, और इसी तरह हुक्म है जब आका ने अपनी बांदी से कहा हादी ही मौलाती लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी, बांदी आजाद हो जाएगी क्योंकि यहां मौला का और कोई माना करना मुनासिब नहीं, तो यहां मौलात का माना भी आजाद शुदा बांदी ही के करना पड़ेंगे और माना यहां मुनासिब नहीं बनता। तो यह माना है लिमा बैयन्ना, उस दलील की वजह से जो हमने बयान कर दी। आगे देखिए वलौ काला अनै तु बिहिल मौला फिद्दीन अविल कदिब युसद्दकु फीमा बैनहु व बैन अल्लाह तआला वला युसद्दकु फिल क़ज़ा। भाई साहिब हिदाया ने तो आपको बतला दिया कि आका ने अपने गुलाम से कहा हाजा मौलाया, तो यहां पर मौला का माना आजाद शुदा के ही करना पड़ेंगे, यानी आका कह रहा है ये मेरा आजाद शुदा गुलाम है और ये सरीह के दर्जे में है, लिहाजा इससे गुलाम आजाद हो जाएगा क्योंकि यहां मौला का कोई और माना मुनासिब नहीं बनता। लेकिन आका ये लफ्ज कहने के बाद कहता है कि ये तो मैंने वैसे झूठ मूठ कहा था, हाजा मौलाया, ये मेरा आजाद शुदा है, मैंने तो इसको कोई आजाद नहीं किया, ये मैं वैसे झूठ मूठ कह रहा था, झूठ बोल रहा था भाई, या आका कोई और माना बयान करता है मौला का, हमने तो कहा यहां मौला का माना है मुअतक के, यानी आजाद शुदा, लेकिन आका कहते हैं नहीं, यहां मैंने मौला के दूसरे माना का इरादा किया था, यानी मददगार या मौला मुआलात, यानी वो शख्स जिसके साथ अक़्दे मुआलात किया गया हो, मैंने तो उस माना का इरादा किया था, मैंने तो यहां मौला के आजाद शुदा वाले माना का इरादा नहीं किया। तो इस सूरत में याद रखो फुकहा फरमाते हैं कि दयानतन आका की तस्दीक की जाएगी कि ये उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन अगर ये मसला काजी के पास चला गया तो काजी इस शख्स की तस्दीक नहीं करेगा बल्कि गुलाम के आजाद होने का हुक्म जारी करेगा। तो दयानतन इस आदमी की तस्दीक की जाएगी लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि आका अपने कलाम का जो माने मुराद बयान कर रहा है वो जाहिर के मुखालिफ है। जाहिर यही है कि यहां मौला का माना मौतक ही करना पड़ेंगे और माना यहां मुनासिब नहीं है भाई। जाहिर यही है कि इससे गुलाम आजाद हो जाएगा क्योंकि मौला का लफ्ज यहां सरीह के दर्जे में है। नीज इसलिए भी काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा क्योंकि वो अपने कलाम का ऐसा माना बयान कर रहा है जिसमें उसका फायदा है। हादा मौलाया, अगर इस मौला का माना मौतक के करें तो गुलाम आजाद होता है और गुलाम इस आदमी के हाथ से निकल जाता है, और अगर इस मौला का माना कुछ और करें या इसको झूठ करार दिया जाए तो फिर तो इसमें इस आदमी का फायदा है कि गुलाम इसके हाथ से नहीं निकलेगा भाई। तो चूंकि यहां पर यह शख्स ऐसा माना बयान कर रहा है जिसमें इसका फायदा है तो तोहमत की वजह से काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है कि ये अपने आप को नुकसान से बचाना चाहता है इसलिए ये माना बयान कर रहा है भाई, लिहाजा काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं वलौ काला, और अगर आका ने कहा अनई तु बिहिल मौला फिद्दीनी अविल कज़िबा, आना यानी का माना होता है इरादा करना। वलौ काला, और अगर आका कहता है अनई तु बिहिल मौला फिद्दीनी कि मैंने मौला फिद्दीन का इरादा किया, मैंने इस लफ्ज से मौला के जरिए मौला फिद्दीन का इरादा किया यानी वो जिसने अक़्दे मुआलात किया हो दीन के अंदर मैंने उसका इरादा किया, अविल कज़िबा या मैंने झूठ का इरादा किया था, मैं वैसे ही झूठ बोल रहा था, तो युसद्दक़ु फीमा बैनहु व बैन अल्लाह तआला, तो तस्दीक की जाएगी साका की उसमें वो जो इसके और अल्लाह के दरमियान है। वला युसद्दक़ु फिल क़ज़ाई, और कजा के अंदर इसाका की तस्दीक नहीं की जाएगी, लिमुखालफतिहि ज़ाहिरा, इस वजह से कि उसका कलाम जाहिर के मुखालिफ है भाई। वो एक ऐसे माना का इरादा कर रहा है जो यहां मुनासिब नहीं बनता। वह अम्मसानी, अब दूसरे लफ्ज की बात आ गई भाई। मतन में आया था आका ने अपने गुलाम से कहा हाजा मौलाया, ये मेरा मौला है, या आका ने अपने गुलाम को निदा दी या मौलाया, ए मेरे मौला। तो अब ये जो दूसरा लफ्ज था निदा वाला, इसकी बात करेंगे। हासिले कलाम समझ लीजिए, साहिबे हिदायत ने यहां तक बयान कर दिया कि जो मौला का लफ्ज है आका ने जब अपने गुलाम के लिए इस्तेमाल किया है तो यहां इसके माना मौतक ही के करना पड़ेंगे और माना यहां मुनासिब नहीं, तो यह लफ्ज सरीह के दर्जे में हुआ। और आजादी के लिए जो लफ्ज सरीह हो उसको निदा में इस्तेमाल किया जाए तो गुलाम आजाद हो जाता है। जैसे पीछे मिसाल गुजरी भाई, आका ने अपने गुलाम को कहा या हुर्रो या अतीकू, और ये खुर और अतीक ये तो आजादी के अंदर सरीह हैं, तो निदा के अंदर भी जब सरीह लफ्ज इस्तेमाल किया तो ये अपना अमल दिखाएगा और गुलाम आजाद हो जाएगा। यहां पर भी मौला का लफ्ज जो है वो मौतक के अंदर सरीह के दर्जे में है, तो जब सरीह लफ्ज के साथ आका ने अपने गुलाम को निदा दी या मौलाया, ए मेरे मौला, तो इस सूरत में भी गुलाम आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अम्मसानी, और बाकी जो दूसरा लफज है यानी या मौला या वो जो निदा का लफ्ज है, फली अन्नहु लम्मा तअय्यनल असफल मुरादन, इसलिए क्योंकि जब इस लफ्ज से यानी ये मौला के लफ्ज से असफल मुतअय्यन हो गया मुरादन बेतबार मुराद होने के, इल्तहक बिसरीह, तो ये मौला का लफ्ज सरीह के साथ मिल गया, ये सरीह के दर्जे में हो गया। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह अम्मसानी, और बाकी जो दूसरा लफ्ज है यानी या मौलाया, फली अन्नहु लम्मा तअय्यनल असफल मुरादन, जब इससे मौला असफल ही मुतअय्यन हो गया मुराद होने के एतबार से, मौला असफल यानी मौतक, जब इससे मौतक ही मुतअय्यन हो गया मुराद होने के एतबार से, इल्तहक बिसरीह, तो ये मौला का लफ्ज सरीह के साथ मिल गया, व बिन्निदा बिलफ्ज सरीह यातिकु, और लफ्ज सरीह के साथ निदा देने की वजह से यातिकु गुलाम आजाद हो जाता है। बि अन काला बाई सूरत के आका अपने गुलाम से कहता है या हुर्रु या अतीकु, तो जैसे इसके अंदर गुलाम आजाद होता है तो या मौलाया के अंदर भी गुलाम आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं बि अन काला बाई सूरत के आका कहता है या हुर्रु या अतीकु, फकजन निदा उबिहाद लफ्जी, तो इसी तरह है इस लफ्ज के जरिए निदा भी, इससे भी गुलाम आजाद हो जाएगा। वकाल जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं ला यातिकु फिस्सानी, के दूसरे लफ्ज के अंदर गुलाम आजाद नहीं होगा। इमाम जुफर फरमाते हाजा मौलाया, ये पहला लफ्ज जो था इसके अंदर तो गुलाम आजाद हो जाएगा, लेकिन या मौलाया, ऐ मेरे मौला, इसके अंदर गुलाम आजाद नहीं होगा। वजह यह, वो फरमाते कि यह लफ्ज कभी इज्जत और इकराम के तौर पर भी बोला जाता है, इज्जत और इकराम के तौर पर भी बोला जाता है, लिहाजा इसकी वजह से गुलाम आजाद नहीं होगा। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्ला ला यातिकु फिस्सानी, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि दूसरे लफ्ज से गुलाम आजाद नहीं होगा, लिअन्नहु युक्सदु बिहिल इकरामु, इसलिए क्योंकि इसके जरिए इकराम और इज्जत का इरादा किया जाता है, बिमंजिलति कौलिही, ये आका के इसी कौल के दर्जे में है, या सईदी या मालिकी, या सईदी ए मेरे सरदार, या मालिकी ए मेरे मालिक। आका ने अपने गुलाम को क्या कहा है, या मौलाया, ऐ मेरे मौला, लेकिन यह मौला का लफ्ज कभी इज्जत और तकरीम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। गोया आका अपने गुलाम को कह रहा है या सईदी, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, या आका उसको यूं कह रहा है या मालिकी, ऐ मेरे मालिक, इन इज्जत के तौर पर, आका इज्जत के तौर पर उसको यह लफ्ज कह रहा है। तो कहते हैं لأنه يقصد به الإكرام, इसलिए क्योंकि या मौलाया के जरिए कभी इकराम का इरादा किया जाता है, بمنزلت قوله या सईदी या मालिकी, ये आका के कौल या सईदी और या मालिकी के दर्जे में है। कुल ना, हम कहते हैं अल कलाम उली हकीकत ही, के कलाम जो है इस लफ्ज की हकीकत के बारे में हो रहा है। ये तो आप मजाजी माना बयान कर रहे हैं मौला का, कि मौला का लफ्ज कभी सरदार या आका के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है, ये तो आप मजाजी माना बयान कर रहे हैं, और हम इस लफ्ज के हकीकी माना के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हकीकी माना पर अमल मुमकिन हो तो मजाजी माना की तरफ नहीं जाएंगे। कुल ना, हम कहते हैं अल कलाम उली हकीकती ही, कि कलाम जो है वो इस लफ्ज की हकीकत के बारे में है, वकद अम कनल अमलु बिही, और नीज इसकी हकीकत पर अमल मुमकिन भी है, बिखिलाफ इमा ज़करहु, बखिलाफ उसके जिसको इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने जिक्र किया, लिअन्नहु लैसा फीही मा यख्तस्सु बिल इत्क, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आजादी के साथ खास हो। इमाम जुफर की अगर बात ली जाए और या मौलाया का क्या माना किया जाए, या सईदी और या मालिकी, तो इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आजादी के साथ खास हो, तो इस सूरत में तो ये सिर्फ इकराम ही होगा, इस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होगा। लेकिन ये मजाजी माना है भाई, और मजाजी माना की तरफ तो तब जाते हैं जब हकीकी माना मुमकिन ना हो भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इमा ज़करहु, बखिलाफ उस माना के जिसको इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने जिक्र किया, लिअन्न लैसा फीही मा यख्तस्सु बिल इत्क़, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आजादी के साथ खास हो, फकान इकरामम महज़न, तो वो सिर्फ इकराम होगा, उस सूरत में सिर्फ इकराम होगा, लेकिन वो मजाजी माना है भाई। आगे देखिए वलौ क़ाला यबनी औ या अखी लम यातिक, और अगर आका ने अपने गुलाम से कहा या बनी ए मेरे बेटे, या आका ने कहा या अखी ए मेरे भाई, लम यातिक, तो इस सूरत में गुलाम आजाद नहीं होगा। भाई देखिए पीछे मसला गुजरा था या हुर्रो और या आतीक, वहां साहिब हिदाया ने बतलाया था कि निदा की हकीकत यह है कि निदा जब वसफ के साथ दी जाए तो मकसद यह होता है कि मुनादा वस्फ मजकूर के साथ हाजिर हो जाए, या मुनादा वस्फ मजकूर के साथ मुतवज्जे हो जाए, और जब वसफ ऐसा हो जिसको आका साबित भी कर सकता है, तो इस सूरत में गोया आका खबर दे रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर हुर्रियत वाला वसफ साबित कर दिया है, अब इस वसफ के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, या इस वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ, तवज्जो है। लेकिन अगर आका अपने गुलाम को कहता है या बनी ए मेरे बेटे, आप बेटा होना यह वसफ तो आका साबित नहीं कर सकता, यह वसफ आका साबित नहीं, जब गुलाम किसी और का बेटा है तो आका के या बनी ए मेरे बेटे कहने से यह गुलाम उसका बेटा नहीं बन जाएगा भाई, या ताका कहे या अखी ए मेरे भाई ये कहने से गुलाम उसका भाई नहीं बन जाएगा। मालूम हुआ जब आका अपने गुलाम से कहे या बनी या अखी कहे तो ये एक ऐसी सिफत जिक्र कर रहा है कि आका इसके साबित करने पर कादिर नहीं है। आका इस सिफत को साबित करने पर कादिर नहीं, जब आका इस सिफत को साबित करने पर कादिर नहीं तो मालूम हुआ यहां सिर्फ उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना मकसूद है, उसके अंदर इस वसफ को साबित करना मकसूद नहीं, क्योंकि आका यह वसफ उसमें साबित कर ही नहीं सकता भाई। तो कहते हैं वलौ काल यबनी औ या अखी लम या अतिक, और अगर आका ने अपने गुलाम से कहा ए मेरे बेटे या ए मेरे भाई लम या अतिक तो गुलाम आजाद नहीं होगा। लिअन्न निदा अली इलामिल मुनादा, इसलिए क्योंकि ये जो निदा होती है ये मुनादा को आगाह करने के लिए होती है। ये निदा किस लिए होती है? मुनादा को आगाह किया जा रहा है। किस चीज से आगाह किया जा रहा है? कि मैं तुम्हें तलब कर रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ या मेरे पास हाजिर हो जाओ, ये उसको आगाह किया जा रहा है। कहते हैं लिअन्न निदा अली इलामिल मुनादा, इसलिए क्योंकि निदा जो है मुनादा को खबर देने के लिए होती है। इल्ला अन्नहु इदा कान बिवस्फि युमकिनु इस्बातुहु मिन जिहतिही, मगर यह कि जब निदा ऐसे वसफ के साथ हो कि युमकिनु इस्बातुहु मिन जिहतिही कि उस वसफ को आका की तरफ से साबित करना मुमकिन हो। कान अली तहकीक जालिकल वस्फ फिल मुनादा, तो इस सूरत में यह निदा जो है उस वसफ को साबित करने के लिए होगी। फिल मुनादा, मुनादा में आका ने अपने गुलाम को आवाज दी या हुर्रो, भाई ये तो गुलाम है ये तो आजाद नहीं है, तो आका इसको हुर्रियत के वसफ के साथ निदा दे रहा है और ये ऐसा वसफ है जो आका अपने गुलाम में साबित भी कर सकता है। मालूम हुआ आका उसको खबर दे रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर यह हुर्रियत साबित कर दी है, अब इस हुर्रियत के वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ। यह माना है कि इल्ला अन्नहु इदा कान बि वस्फि युमकिनु इस्बातुहु मिन जिहतिही, मगर निदा जब ऐसे वसफ के साथ हो कि आका की तरफ से उसका साबित करना मुमकिन हो। कान लितहकीक जालिकल वस्फ फिल मुनादा, तो इस सूरत में यह जो निदा होगी ये उस वसफ को साबित करने के लिए होगी। फिल मुनादा, मुनादा में इस्तेहजारन लहु बिल वस्फ फिल मखसूसी, उसको तलब करने के लिए उस मखसूस वसफ के साथ, किस मखसूस वसफ के साथ, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। कमा फी कौल ही या हुर्रु, जैसे कि आका के कौल या हुर्रु के अंदर है। अला मा बयन्नाह, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। वह इजाकान निदा उबी वस्फिन, और जब निदा ऐसे वसफ के साथ हो कि ला युमकिनु इस बात हूं मिन जिहती ही, कि वो वसफ आका की जानिब से साबित नहीं हो सकता। कान लिल इलामिल मुजर्रदी, तो ये सिर्फ खबर देने के लिए होगी। फिर सुनो, ये जो निदा है इसके जरिए मुनादा को खबर दी जाती है कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तो अगर आका ऐसा वसफ जिक्र करे जो उस मुनादा में नहीं पाया जा रहा लेकिन आका उसको साबित कर सकता है, तो फिर कहा जाएगा आका इस निदा के जरिए मुनादा में इस वसफ को साबित कर रहा है, उसको आजाद कर रहा है। तवज्जो है। लेकिन अगर ऐसा वसफ नहीं है, मसलन यबनी कहा और आका के ए मेरे बेटे कहने से ये गुलाम उसका बेटा नहीं हो सकता भाई, तो ये ऐसा वसफ जिक्र कर रहा है आका कि आका इस वसफ को गुलाम के अंदर साबित करने पर कादिर नहीं। और जब ऐसे वसफ के साथ निदा दे कि आका उसके साबित करने पर कादिर ना हो, तो वहां उसको सिर्फ ये इलाम करार दिया जाएगा कि आका उसको आगाह कर रहा है कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। इस निदा को वो वसफ साबित करना करार नहीं दिया जाएगा क्योंकि आका ये वसफ साबित ही नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ मुनादा को इत्तला दी जा रही है, आगाह किया जा रहा है कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तो कहते हैं وَإِذَا كَانَ النِّدَاءُ بِوَصْفٍ, اور جب ندا ایسے وصف کے ساتھ ہو کہ لا یمکن اثباتہ من جہتہ, کہ آقا کی طرف سے اس کو ثابت کرنا ممکن نہ ہو, کان للاعلام المجردی, تو یہ ندا صرف اس منادا کو خبر دینے کے لیے ہوگی, دون تحقیق الوصف فیہ, نہ کہ اس میں وصف کو ثابت کرنے کے لیے, لتعذری ہی, اس لیے کیونکہ وصف کو تو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے آقا کے لیے. والبنوت لا يمكن اثباتها حالة النداء من جهته, والبنوت بنوت کا معنی ہے بیٹا ہونا, والبنوت اور بیٹا ہونا, لا يمكن اثباتها, اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے, حالة النداء, نداء کی حالت میں, من جهته, آقا کی طرف سے. ایک شخص اپنے غلام کو آواز دیتا ہے یا بنی, اے میرے بیٹے, تو آقا اس غلام کے اندر اپنا بیٹا ہونے کا وصف ثابت نہیں کر سکتا بھائی. تو کہتے ہیں والبنوت لا یمکن اثباتها حالة النداء من جهته, اور بیٹا ہونا یہ جو وصف ہے اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے ندا کی حالت میں آقا کی جانب سے, لأنه لو انخلق مما غیره, ان خلق ینخلق کے معنی ہے پیدا ہونا, لأنه لو انخلق مما غیره, اس لیے کیونکہ غلام جب یہ کسی دوسرے کے پانی سے پیدا ہوا ہے, یعنی کسی دوسرے کے نطفے سے پیدا ہوا ہے, لا یکون ابنا له بهذا النداء, تو یہ غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس ندا کی وجہ سے. جب یہ کسی اور کا بیٹا ہے تو آقا کی ندا دینے سے یہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا. کہتے ہیں لأنه لو انخلق مما غیره, اس لیے کیونکہ اگر یہ غلام کسی دوسرے کے پانی سے پیدا ہوا ہے, لا یکون ابنا له بهذا النداء, تو یہ غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس ندا کی وجہ سے, فکان لمجرد الاعلام, تو یہ جو ندا ہے یہ صرف اس کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ويروى عن ابي حنيفه رحمه الله شاذا, اور روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے شاذ طریقے پر. یاد رکھو شاذ کہتے ہیں جو اصول اور ضابطے کے خلاف ہو جی. اس کو بھی شاذ کہتے ہیں, اور اسی طرح شاذ کے معنی نادر اور قلیل ہونے کے بھی ہیں. تو یہاں یہی معنی کر لیں گے کہ امام صاحب سے شاذ طریقے پر نقل کیا گیا ہے, یعنی کسی ایک آدمی نے یہ بات نقل کی ہے, عام علماء نے یہ بات نقل نہیں کی, تو امام صاحب سے شاذ طریقے پر نقل کیا گیا ہے, انہ یعتق فیہما, کہ غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا ان دونوں لفظوں میں, یعنی اگر آقا نے اپنے غلام کو یا بنی کے ساتھ ندا دی تو بھی آزاد ہو جائے گا, اور یا اخی کے ساتھ ندا دی تو بھی غلام آزاد ہو جائے گا. یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے امام صاحب سے شاذ طریقے پر, یعنی کسی ایک آدمی نے نقل کی ہے, عام علماء اس کو نقل نہیں فرماتے. تو کہتے ہیں ویروا عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی شاذا, اور امام صاحب سے شاذ طریقے پر یہ روایت کیا گیا ہے کہ انہ یعتق فیہما, کہ ان دونوں لفظوں کے اندر بھی یہ غلام آزاد ہو جائے گا, والاعتماد علی الظاہر, اور اعتماد جو ہے وہ ظاہر روایت پر ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ علماء کا اعتماد جو ہے وہ ظاہر روایت پر ہے. ظاہر روایت وہ جو اوپر متن میں آیا کہ ولو قال یبنی او یا اخی لم یعتق, اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا, اس پر علماء کا اعتماد ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ول اعتماد علی الظاہری, اور اعتماد جو ہے وہ ظاہر روایت پر ہے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.